ओम शांति। तो आज की मुरली सबने सुना, है ना? क्योंकि मधुबन की दिनचर्या ही ऐसी है, अमृत बेला, मुरली क्लास, नुमा शाम का योग स्वतः होता है। तो मुरली कैसे सुनते हैं? मुरली कैसे सुनते हैं या कैसे सुनना चाहिए मुरली? कौन बताएगा मुरली कैसे सुनना चाहिए? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई? जी, आत्माभिमानी स्थिति में होकर मुरली सुनना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, ये तो ठीक है, सभी बातें हैं, सभी जरूरी है, लेकिन हमें मालूम होता है कि आत्मा बन करके, आत्मा समझ कर मुरली सुनना है, और स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं ये भी मालूम है, फिर भी मुरली में कभी कभी कुछ और आता है, कभी हल्का सा नींद झुटका कुछ आता है, अलर्ट होके नहीं, लेकिन चाहते तो नहीं है, लेकिन जब मुरली सुनते हैं तो कभी कभी थोड़ा होता है ना, कभी कभार हो जाता है, भोजन के टाइम होता है, खाना खा रहे हो और झुटका है, भोजन के टाइम नहीं आता ना, मुरली में आ जाता है। क्यों क्यों आ जाता है? बाबा ने विधि बताई है, बहुत अच्छी, मुरली कैसे सुनना चाहिए, ये बाबा ने खास एक अव्यक्त मुरली ही चलाया हुआ है इस पर। जी हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। तो बाबा ने यही कहा है कि जब भी मुरली सुनते हैं ना, कभी भी जब मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते, जैसे कथा सुनते हैं ना, सुनने जैसा नहीं है, क्या करो? उसको देखना है या अनुभव करना है, है ना? आजकल कोई भी वस्तु आपके पास है, आपके पास मोबाइल है, की है, भूल जाते हैं, रख देते हैं कहीं, फिर ढूंढते हैं तो मिलती नहीं जल्दी, आजकल बहुत होता है, वो खुद रखे होते हैं और वही भूल जाते, कहाँ रखा मैंने? क्यों? क्योंकि जब रखा उस वस्तु को तो देखा नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं भाई, ध्यान से करना है ना, ध्यान से काम करना, ऐसा नहीं केवल करना नहीं, ध्यान से। क्यों? जैसे आप कोई भी चीज रख रहे हैं, की रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, जब रखते समय ना एक पल को ध्यान दे के देखिए उसको, फिर रखिए, देखते हुए रखिए कि यहां रख रहा हूं, जो भी काम कर रहे उसको देखते हुए कि ये कर रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, जब देखते हुए कोई काम करेंगे ना तो वो भूलेगा नहीं, आपको कभी भूल भी जाएगा ना तो याद आएगा, हाँ मैंने टेबल पर रखा था, क्योंकि आपने देखा है ना, तो देखा है आंख, हम तो वो, इसलिए ये हमें आदत डालनी है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसे देखते हुए ध्यान से, है ना, तो यही मिसिंग हो जाती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप मुरली सुनते हो तो क्या करो, अनुभव करो उस बात में को, या उसको देखो, अनुभव या देखो। जैसे मान लो बाबा मुरली चला रहे, बाबा कहते हैं अमरनाथ, तो अमरनाथ जब बाबा कहते हैं तो अमरनाथ आप देखो सामने, कैसे अमरनाथ है, कैसे जाते हैं, कैसा मंदिर, सब कुछ। तो जो भी बाबा मुरली चलाते ना उसको देखने की कोशिश करिए आंखों से, अनुभव। तो क्या है, हम जब केवल शब्द सुनते हैं तो शब्द केवल हम रिपीट करते हैं, है ना, सुना और उसमें ताकत भी लगती है रिपीट। इसलिए अभी मान लीजिए किसी को कहें कि अभी एक कहानी सुनाई जाएगी यहाँ, आप कहानी सुनो मौखिक, और दूसरा कहें कि उधर आप जाइए उधर मूवी दिखाई जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे, ज़्यादा मूवी देखने जाएंगे, क्यों, क्योंकि अनुभव होता है ना, सम्मुख देखते हैं, आँख भी देखते हैं तो कान भी सुनता है, हर एक अंग जो है कर्मेंद्रिय क्या है, बिजी है। कहानी में केवल कान, इसलिए क्या होता, सुनते सुनते तो इसलिए हर एक, तो आप जब कोई भी चीज को देखते हैं विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज भूलती नहीं है, याद रहती है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम मुरली सुने तो कैसे सुने, जो बाबा कह रहे हैं ना जिसके बारे में, उसे हमें देखना है, फील करना है ना, इमर्ज करना है, फिर हम भूलेंगे नहीं, फिर हमको धीरे धीरे मुरली बहुत अच्छा याद भी रहने लगेगी और हम इंजॉय भी करेंगे। हाँ कभी थके हैं तो अलग बात है, हो सकता नींद पूरी ना हो और शरीर की रिक्वायरमेंट हो, वो कभी कभार, लेकिन जनरली ये अनुभव बहुत काम आते हैं, इसलिए इस तरह से मुरली हमें सुननी चाहिए। तो बाबा ने आज क्या कहा कि किसमें थकना नहीं है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। तो याद की यात्रा में थकावट होती है, याद की यात्रा में कैसे थक जाते हैं, याद की यात्रा में जैसे मान लो पैरों से तो चलते हैं, आप यहां से 10 किलोमीटर जाएंगे तो थक जाएंगे, याद की यात्रा में क्या करते हैं कि थक जाते हैं, तो याद की, इसीलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कोई इतना सहज नहीं है, है ना, बहुत चैलेंजिंग है ना। तो याद की यात्रा में कभी ही थकना नहीं है। तो याद की यात्रा किससे करते हैं, मन और बुद्धि से, है ना। तो थकते कब है, जब कहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज देख रहे हैं सुन रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है तो थक जाएंगे, कहीं मजा आ रहा हो तो थकेंगे नहीं, थकेंगे। तो ये यात्रा करना ही है किससे, मन से, है ना, आत्मा। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी होते हैं, तो ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो जितना जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे इतना ही हम बाबा को यथार्थ रूप से याद कर सकेंगे। यदि हम आत्मा नहीं समझते हैं, आत्म अभिमानी नहीं होते हैं, अपने को आत्मा समझ नहीं समझते हैं, तो अवश्य क्या होता है, यदि आत्मा नहीं समझते हैं तो क्या होता है, यदि आत्मा नहीं है तो फिर हम क्या हैं, बॉडी कॉन्शियस है। अगर हम पहले आत्मा नहीं समझते हैं तो अवश्य देही अभिमानी, देह अभिमानी है ना, या बॉडी कॉन्शियस है। तो जब देह अभिमान में है तो क्या आएगा, तूफान, बाबा नहीं कहना। तो यह अर्थात यानी जब भी आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, है ना, तो नेचुरल, अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो शरीर देखने की तो आदत है, शरीर समझने की आदत है, स्वतः ही है ना देह अभिमानी हो जाएंगे। और जब देह समझेंगे अपने को तो कौन याद आएगा, देह के संबंधी, है ना, बच्चे परिवार काम धंधा ये सब आएगा। और ये सब जब आएगा तूफान तो क्या करेगा आपको, जब तूफान आएगा तो याद में रह नहीं सकेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप पहले तो आत्मा समझो, फिर बाबा की याद में बैठो, अदरवाइज देव मानी है, सब याद आ जाएंगे। और जितनी उनकी याद प्रबल होगी तो वही क्या बन जाती है, तूफान का रूप बन जाती है ना। तूफान भी कई तरह के होते हैं ना, तूफान भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें स्पीड के आधार पर बोलते हैं, कुछ हरिकेन होता है, कुछ तूफान होता है, कुछ सुनामी होती है, तो उनकी स्पीड के आधार पर मापते हैं। तो ऐसे ये भी जो तूफान आते हैं ना, कई लेवल के होते हैं। जो मन के भी तूफान आते हैं, कई कुछ ऐसे होते हैं जो हम समझा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो उसके लिए चाहिए बाबा की याद, बहुत जरूरी है, या आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। और एक तो ये चीज है कि आप जब देह अभिमानी हैं तो बाबा तो याद नहीं आता है, और तूफान आने की वजह से जो पिछली कमाई भी है ना हमारी, वह भी क्या हो जाती है, वह भी खत्म हो जाती है या वेस्ट हो जाती है उसमें, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस तूफान से बचना है तो क्या करना है, हमें हम जितना ऊपर की स्थिति में रहेंगे ना, इन तूफानों से बच जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा ना, धूल मिट्टी, उस आंधी तूफान में क्या आते, धूल मिट्टी आती है। धूल मिट्टी आएगी तो आपके जो साफ सुथरे चीजें हैं वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वेस्ट। जो नया कुछ काम करना हो वो तो अलग, जो आपने अच्छा किया हो वो भी क्या होगा, वो भी वेस्ट, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे आजकल भी जो विज्ञान के साधन है या गवर्नमेंट्स भी है, इसका सिस्टम रखी हुई है कि कोई तूफान तो नहीं आने वाला है ना। तो इसके लिए क्या कैसे पता चलता है, उपग्रह सैटेलाइट छोड़े हुए ना अंतरिक्ष में, सैटेलाइट है तो सैटेलाइट से पता चल जाता है कि अभी समुद्र में यहां दबाव का क्षेत्र बना है और ये तूफान यहां से अभी चल देता। तो जब गवर्नमेंट्स को या वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि यहां तूफान यहां से चल दिया है, तो गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि कितने देर में भी पहुंच जाएगा तूफान यहां। तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना भाई कि अभी समुद्र में नहीं जाओ, है ना, और जो बाहर भी है वो सुरक्षित स्थान पर रहो, और तूफान आने के बाद जरूर कुछ वेस्ट होगा तो उसकी हमें रिकवरी कैसे करनी है, तो ये भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो ये कैसे पता चला, पहले जमाने में बहुत नुकसान होता था क्योंकि मालूम नहीं, आप सब काम कर रहे हैं और तूफान आ गया, तूफान आ गया आप तैयार नहीं है तो बहुत वेस्ट हो जाता था। अभी क्या है, सैटेलाइट की वजह से पता चल जाता है कि अभी तूफान आने वाला है, कब आने वाला है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो ऐसे ही जब हम, इसीलिए बाबा ने कहा आप देही अभिमानी बनो, है ना, देही अभिमानी बनेंगे और याद की यात्रा में रहेंगे तो क्या होगा, उच्च स्थिति में है, बाबा के पास है तो क्या होगा, एक तो तूफान का असर नहीं होगा, दूसरा जब तूफान कोई आने वाला है तो उसे भी हम जान जाएंगे पहले से ही, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि विघ्न आने ही हैं। कोई ये ना सोचे कि विघ्न तो आएगा ही नहीं हमारी लाइफ में, बाबा ने पहले ही कह दिया विघ्न आने ही हैं। तो जितना जितना हम देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे, है ना, और बाबा की याद में स्थित रहेंगे, तो एक तो बाबा ने कहा हम थकेंगे नहीं, दूसरा हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी जो हम पहले से ही समझ सकेंगे कि अभी क्या विघ्न आने वाला है, और हम फिर तैयारी कर सकेंगे, है ना। जैसे मान लो आप किसी के साथ कारोबार में किसी से बात कर रहे हैं, तो यदि आप पहले से ही आपको मालूम है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्सा वाला है, बहुत क्रोध करता है, तो जब आप उससे मिलने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पहले थोड़ा तैयारी से जाएंगे। लेकिन आप किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है आपको, इनका व्यवहार क्या होगा, और अचानक आप मिलते हैं और उनका व्यवहार कुछ दूसरे तरह का होता है, तो फिर तो अचानक जब होता है तो धोखा खाने की संभावना होता है। पहले से सजग हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, है ना, देही अभिमानी अवस्था में और बाबा की याद में, तो ये माया के तूफानों से हम, है ना, जो तूफान आते हैं ना, इनसे हम थकेंगे नहीं, है ना, और ये थका देते हैं तूफान। और क्यों थकाते हैं? जब हम देह अभिमानी अवस्था में होते हैं, है ना, देह मान की अवस्था है, तो हम थक जाते हैं। दूसरा बाबा ने क्या कहा? कैसा स्वभाव संस्कार है, क्या संस्कार है, अगर तो 21 जन्म का के वर्षा को हम गंवा देते हैं या उसको लकीर लगा देते हैं, कौन सा संस्कार ऐसा? जी, रूठने का, है ना, कैसे रूठते हैं? किससे किससे रूठते हैं? टीचर से, बाबा से। तो बाबा से क्यों रूठ जाते हैं? तो जो रूठने का संस्कार है ना, रूठने का संस्कार बाबा से रूठते हैं, अर्थात बाबा से रूठना अर्थात कैसे, बाबा को रूठने का असर किसमें दिखता है? बाबा से रूठने का असर हमारे व्यवहार में तो दिखता ही है, जैसे याद, याद से भी हम दूर हो जाएंगे, है ना, आपका याद का चार्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब याद नहीं है तो पढ़ाई में भी सुख नहीं आएगा, है ना, पढ़ाई में सुख नहीं आएगा, तो जो बाबा की श्रीमत मिलती है हमें, कैसे रहना है, क्या व्यवहार करना, उससे ही दूर हो गया, तो हम सबसे ही हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। बाबा से नहीं रूठते हैं केवल, आप समझिए कि सबसे ही रूठ जाते हैं, सबसे भी नहीं, स्वयं से ही, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, हमने 21 जन्म के राज्य भाग्य को, वर्षे को क्या करते हैं, लकीर लगा देते हैं ना। तो केवल बाबा से रूठने की बात नहीं है, बाबा से भी रूठ जाते हैं, पढ़ाई से भी रूठ जाते हैं, और पढ़ाई से रूठे मिस संगमी का जो सुख है उससे भी वंचित हो जाते हैं, है ना। तो इतना हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए रूठना नहीं है। और ये भी, रूठते कौन है? जो कमजोर होते हैं। जो शक्तिशाली होंगे वो कभी नहीं रूठेंगे, और शक्तिशाली कौन होंगे? आज बाबा ने बताया ना, कौन शक्तिशाली होंगे? जो याद में मस्त होंगे, है ना, बाबा ने कहा जो याद में पक्के मस्त होंगे ना, वो बहुत शक्तिशाली होंगे। और जो बहुत शक्तिशाली होंगे वो छोटी मोटी बात में रूठेंगे नहीं, है ना। आप देखेंगे पहले जमाने के लोग होते थे, उनके अंदर बहुत पावर थी। जैसे मान लो किसी का पिता है, अपने उसके बच्चे बड़े हैं, फिर भी बच्चों को डांटते थे ना, वो सहन कर जाते थे, हमारे पिताजी। डांट खाने के बाद भी वो रिस्पेक्ट होता था पिता के लिए, पिताजी ने कहा रिस्पेक्ट, डांट खाने के बाद भी। आजकल छोटे बच्चे भी नहीं सहन करेंगे, वो भी लड़ जाते हैं, वो भी जवाब देते हैं। तो जो माँ बाप के लिए पहले लोगों में था रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सहन करना, क्यों? उनके पास शक्ति थी। शक्ति क्यों थी? ज्यादा, है ना, जो आजकल इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक साधन का यूज करने लगे, ये सब यूज नहीं करते थे ज्यादा ना, तो इसलिए शक्ति बहुत थी। अब ये सब साधन यूज करने से हमारी शक्ति बहुत वीक हो गई, कमजोर हो गए। तो पहले जब किसी को सिखाओ ना डांट के भी, तो व्यक्ति अंदर रियलाइज करता है, वो खुद अंदर से, हाँ मुझसे गलती हुई, अपने को सुधारता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आत्मा इतनी भी खो गई है कि वो बाबा कहते हैं ना कपड़े फट जाते हैं जहां ज्यादा दाग होती है। ऐसे जोर से डांटेंगे ना तो हो सकता है वो छोड़ के चले जाए रूठ, क्योंकि तो रूठने का संस्कार होता ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देख के आजकल किसी को कुछ कहना पड़ता है, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे, क्योंकि आत्माओं में इतने वीक हो गए ना, सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आजकल किसी के साथ चलना भी, बहुत जिसको चलाना होता है उसके लिए बड़ा टफ होता है, परखना पड़ता है कैसे। तो इसीलिए दादी ने एक बार कहा भी था कि आजकल की आत्माओं को कैसे चलाएंगे, उनसे कैसे चलना है। कैसे चलेंगे आजकल की जो आत्माएं, प्यार से, और दूसरा क्या कहते हैं उसको, लव और ला, है ना। पहले कहते थे कि लव और ला दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन दादी कहती थी नहीं, अभी इस समय आत्मा इतनी वीक हो गई है कि कैसे चलना है, केवल लव से। लव से चलेंगे, उनको स्नेह देंगे, तो फिर उनको ला पर चलना आ जाएगा। आजकल आत्मा इतनी वीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप जितना याद में मग्न रहेंगे, जितना मस्त रहेंगे, उतने शक्तिशाली बनेंगे, और जितना देह अभिमानी अवस्था में रहेंगे ना, जितना आपको देह समझेंगे, तो क्या होगा, आपके सभी सगे संबंधी सब याद आएंगे, और वो जो व्यर्थ बातें होती है ना देह के आधार पर आधारित बातें, तो उसमें संकल्प बड़े फास्ट चलते हैं, जो समर्थ संकल्प है वो बड़े स्लो होते हैं। लेकिन यदि आप व्यर्थ में चले गए, जैसे देह समझने लगे, देह की बातें, आत्मिक स्थिति भूल गई कि मैं आत्मा हूं, ये भूल ही गया है, देह समझा हमने, और सभी संबंधी याद आए, तो उनके संबंध, और जैसे बच्चा याद आए ना, और तेज याद आएगा, और याद बढ़ती जाएगी, अभी क्या कर रहा होगा, अभी क्या बच, घर की सब बातें बहुत फोर्सफुली सब याद आएंगी। बाबा को याद करने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, वो एक पर एक लिंक सब, बच्चे को बैठे याद करने के लिए बैठे, अब पता नहीं और क्या क्या याद आने लगा, उनको पूछो कहां से याद करना शुरू किया था मालूम नहीं, तो वो क्या है, यही तूफान बन जाता है। तेजी बाबा ने कहा ना कि ये माया के तूफान, ये जो आते हैं ये क्या करते हैं, बुद्धि की क्या तोड़ देते हैं, बुद्धि का तार जो है ना, जो कनेक्शन है उसको तोड़ते हैं। तो ये तूफान इसीलिए बहुत खतरनाक भयावह है, क्योंकि केवल इस समय की बात नहीं है, इस समय पूरे 21 जन्म का है ना, 21 जन्म के लिए हम जमा कर रहे हैं, तो इस समय कोई भी कुछ गलती होती है तो हमारा पूरा 21 जन्म के लिए, तो इसलिए हम जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे है ना, तो हम शक्तिशाली बनेंगे, और जितना देह अभिमानी समझेंगे माया के विघ्नों के बस हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जितना हो सके, जितना भी हो सके, अगर आप, इसीलिए अगर माया के विघ्नों से बचना चाहते हैं तो ये विचारों के रूप में आते हैं। तो यदि किसी को, मैं कहता हूं किसी को योग नहीं भी लगता है, जैसे कहते हैं ना योग मेरा नहीं लग रहा, तो अब कुछ नहीं करो, क्या करो, मुरली पढ़ते जाओ, मुरली पढ़ने की आदत डाल दीजिए, है ना। तो मुरली में सब है, मुरली में मधुबन भी है, सेवा भी है, बाबा भी है, तो मुरली में अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा ना तो भी पढ़ते जाओ, 6 पेज 7 पेज रोज पढ़ो, फिर धीरे 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 उसमें आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब मुरली में आप भ्रमण करेंगे, मुरली का बार बार चिंतन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका योग लगा ही हुआ है, इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा से प्यार की निशानी क्या है, मुरलीधर से प्यार की निशानी क्या है, मुरली से प्यार है ना। आप कहो बाबा से हमारा बहुत प्यार है, लेकिन मुरली पढ़ने की सुनने की का समय नहीं है। तो दिन में जितनी बार हमें मुरली पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, हम मुरली पढ़ें, मुरली सुने, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि हम जितना अपने को आत्मा समझते हैं ना, जितना आत्मा समझते उतना क्या हो जाता है, ऐसा शांति की करंट जैसे हो जाती है। क्योंकि आत्मा जो ही इस शरीर से अलग होती है ना, एक मिनट पे आप फील करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, है ना। अब देखिए कैसे आत्मा फील करती है, है ना। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि अब जितना आत्मा इन कर्म इंद्रियों से, इस देह से अलग होते ही आत्मा की पावर बहुत है, तो शरीर में आने की वजह से, इसके बस होने से उसका प्रभाव चूंकि इधर उधर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आत्मा सीधा, इसीलिए जानकी दादी भी क्या कहती थी, तीन बार ओम शांति कहती थी ना दादी। और वही बात आज बाबा ने भी कहा कि आत्मा समझने से, यानी इस देह से अलग होने से क्या हो जाता है, शांति की करंट आ जाती है। जो ही हम आत्मा समझते हैं तो क्या हो जाती है, करंट जैसी आत्मा में शांति का वाइब्रेशन फैल जाता है। और जब आत्मा समझ करके हम बाबा की याद में मग्न हो जाते हैं, तो बाबा की याद में मग्न होने से क्या हो जाता है, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है आत्मा में। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना हमारे अंदर पावर, शक्ति है ना। तो ये तो दोनों बातें हैं, शक्ति और शांति। तो तीसरी बात आज बाबा ने मुरली में नहीं कहा है, लेकिन दादी उसको भी कहती थी, जानकी दादी। और तीसरा ओम शांति, अर्थात जब हम परिवार को देखते हैं तो क्या आ जाती है, खुशी। तो आत्मा समझते हैं तो शांति आ जाती है, और बाबा की याद में स्थित होते हैं तो शक्ति आ जाती है, परिवार को देखते हैं तो खुशी आ जाती है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अब जब बाबा को भी हम याद करते हैं तो कहां याद करें, यहां नहीं याद करना है, इस दुनिया में नहीं याद करना है। कहां याद करना है, परम धाम में, है ना। तो ये बाबा पहले भी जब बाबा आते थे ना, अव्यक्त पदरामणि होती थी या ब्रह्मा बाबा के तन में भी बाबा आते थे, तो भी बाबा यही कहते थे कि आप भले सम्मुख देख रहे हैं बाबा को, लेकिन याद कहां करो, परम धाम में। इसीलिए बाबा विधि क्या बताते हैं कि आप जो भी आपके सम्मुख आते हैं तो किसको देखो, किसी को भी, जो भी आपके सम्मुख आते हैं बाबा कहते हैं उनको आत्मा देखो, है ना, किसी को भी आत्मा देखो, लेकिन याद क्या करो, याद किसको करो, किसको करो याद, बाबा को। ये विधि बाबा बताते ना कि देखो जो सामने जो भी हैं उन्हें आत्मा तो देखो, लेकिन बाबा को याद करो। तो इससे क्या हो जाता है, आप देखेंगे जब किसी को देखते हैं ना तो क्या याद आता है, जब हम किसी को देखते हैं तो हम ये देखते हैं इनका हमारे साथ व्यवहार कैसा है, पहले कैसा व्यवहार करते थे, है ना। तो अगर उन्होंने मुझसे कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो हम देखते हैं सामने, लेकिन हमको याद क्या आ रही है, पिछली बातें। तो इससे हमारा हिसाब किताब और बन जाता है। तो इसीलिए सम्मुख जो भी है उसे क्या देखें, आत्मा। लेकिन जब हम बाबा को देखते हैं ना तो बाबा कैसा है, तो हमारे नैनों में, हमारे वाचा में सब बाबा के गुण आ जाते हैं, है ना। तो ये पहला ही लेसन है, समझिए, है ना। तो इसलिए जितना हो सके इस अभ्यास को हमें जमाते जाना है आत्मा समझने का। और देह अभिमान से तो छोड़ने का नहीं है। स्वतः अगर हम आत्मा समझते हैं तो देह अभिमान छोड़ने की कोई अलग से मेहनत तो है नहीं, स्वतः छूट जाता है, स्वतः अलग हो जाता है ना। और आज बाबा ने क्या कहा कि जैसे कोई बीमारी भी आती है तो उसमें भी क्या होना है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि ये तो बीमारी आ गई। बाबा ने कहा है तो अच्छी बात है ना, बीमारी अर्थात कर्म भोग, है ना। तो कर्म भोग मीन्स, कर्म भोग में डबल फायदा हो जाता है। एक तो ये हो जाता है कि हमारा जो विकर्म है ना, कुछ पाप है वो भी चुक्त होते हैं। दूसरा, हम रियलाइज भी करते हैं। बीमारी के समय जितना व्यक्ति रियलाइज करता है तो रियलाइजेशन भी हो जाता है, विकर्म भी चुक्त होते हैं। और बाबा ने तो एक मुरली में 2-3 महीने पहले बाबा ने कहा था कि अगर बीमारी है और बीमारी के समय आप साक्षी हो जाते हैं, साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा कि अगर साक्षी होकर के आप कर्म भोग चुक्त करते हैं, तो बाबा ने कहा एक तो बीमारी से या कर्म भोग से वो चुक्त तो होता ही है, दूसरा हमारा सुख का खाता भी जमा हो जाता है ना। वो मुरली में आपने कई मुरलियों को जोड़ के बनाया था, उस मुरली को एक ही, क्योंकि मुझे याद है जब वो मुरली चली थी तो जानकी दादी ने पूछा था राजू भाई जी से कि ये कहां से आपको मिला, कहां से ये मुरली मिली, ये तो मैंने आज तक सुना नहीं था। जानकी दादी ने बोला डायमंड नाल में। तो राजू भाई जी ने तो उसमें यही दिखाया है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई आत्मा ऐसी है जो केवल बीमारी में ही टाइम निकाल जाता है उसका, कुछ उसको सेवा करने का चांस नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा नहीं, वो भले बीमार है, भले हाँ सेवा नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो साक्षी हो करके, साक्षी हो जाता ना अलग, तो साक्षी होने से सुख का खाता उसका जमा हो जाता है। तो एक साथ, एक तो उसका कर्म भोग से चुक्त हो गया, दूसरा उसका सुख का खाता जमा हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा बाबा ने कि इसमें हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा चुक्त हो रहा है, क्योंकि यदि यहां चुक्त नहीं होगा तो, यहां चुक्त नहीं होगा तो धर्मराज के यहां चुक्त करना पड़ेगा, धर्मराज के डंडे खाने होंगे। तो धर्मराज के यहां चुक्त होने से क्यों, क्या नुकसान हो जाता है, क्यों ऐसे हो जाता है? अगर यहां सजा मिलती है या कर्म भोग है या धर्मराज के यहां है, दोनों में क्या अंतर हो जाता है? बहुत अच्छा। तो यही है कि अभी इस समय, है ना, बाबा की याद में रह करके, जो कहते हैं बाबा की, जब हम याद में रहते हैं तो सूली भी क्या बन जाती है, सूली क्या हो जाती है, कांटा बन जाता है, सूली भी कांटा बन जाता है, यानी बाबा की मदद मिलती है। लेकिन जब धर्मराज की बात आती है तो बाबा खुद ही साक्षी हो जाता है ना बाबा, दैट टाइम बाबा कुछ मदद नहीं कर सकता, है ना। तो मदद अभी बाबा की मिलती है, और इसमें चूंकि आपने इसको पास किया ना, तो इससे आपका जमा भी हो जाता है, आपका पद भी ऊंच हो जाता है। लेकिन अगर धर्मराज के सामने आपने सजा खाया तो क्या हुआ, पद भ्रष्ट हो जाता है, पद भ्रष्ट होगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी कि जितना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें जितना हो सके यही सजाओं से सजाओं को चुक्त कर देना है, या तो कर्म भोग से या याद। सबसे नंबर वन तो है बाबा की याद में रहने से, है ना। और इसीलिए बाबा ने कहा विजयी रत्न भी कौन बनते हैं, जो साक्षी, जितना आप डिटैच रहेंगे, जितना डिटैच आप जरूर बनते हैं उतने विजयी रत्न, यानी आप जितना जितना विकर्मों को चुक्त करते हैं, विकर्मों को खत्म करते हैं, तो विजयी रत्न बनने का चांस हमें मिलता है। और इसीलिए बाबा ने और क्या कहा कि जब हम यात्रा पर भी जाते हैं तो क्या होता है, यात्रा में भी जाते हैं तो जगह जगह क्या होते हैं, ठहराव, या जिसको बाबा ने मंजिल कहा। में मुख्य मंजिल तो एक होती है, लेकिन रास्ते में जगह जगह जो आता है तो उससे क्या पता चलता है, हम कहाँ पहुंचे हैं, है ना, है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है तो पहले अहमदाबाद आएगा, फिर सूरत आएगा, फिर ऐसे आप धीरे धीरे जाएंगे ना कोल्हापुर, अचानक पहुंच जाएंगे कोल्हापुर, नहीं ना, तो बीच में मंजिल आएगी ना, आपको पता तो चलेगा ना अभी हम कहाँ आ गए, अभी कितना दूर और है, है ना। तो ऐसे ही जब हम यहां भी पुरुषार्थ करते हैं ना, तो यहां भी हमें ये महसूस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति कहां तक पहुंची है। तो ये अपनी स्थिति को हमें परखना है, देखना है, देखना है कि अभी भी तूफान आते हैं क्या हमें, और तूफान आते हैं, विघ्न आते भी हैं, तो ये देखना कि पहले जो हमको तूफान आते थे वो कितना फोर्स वाले होते थे, अभी कैसे हैं, उसमें कमी आनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि और तूफान बढ़ते जाएं, है ना। तो जितना जितना हम इसको देखते जाएंगे, यानी चेक करते जाएंगे अपने को, तो ही हमारे अंदर फिर सुधार होगा या चेंज होगा। चेकिंग करते जाना है हमेशा। और एक हमें कि हमको यहां पहुंचना है, तो हमको खुद ही बीच में अपनी मंजिल, छोटे छोटे मंजिल जिसको कहते हैं, उसको तय करना है कि पहले मुझे यहां तक पहुंचना है, फिर यहां तक पहुंचना है। इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा आज जैसे वरदान में कि परिवर्तन की शक्ति है ना, परिवर्तन की शक्ति से क्या करना है हमें, परिवर्तन की शक्ति से सर्व की सुक्रिया के क्या बनना है, पात्र बनेंगे। और जब सर्व की सुक्रिया के पात्र बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, विघ्न जीत, है ना। तो बाबा ने कहा कि अब जितना आपको परिवर्तन करने की युक्ति आ जाएगी ना, जितना परिवर्तन करने की विधि आ जाएगी, उतना ही सर्व की दुआएं भी मिलती है ना, क्योंकि हर एक देखना चाहता है कि हम परिवर्तित हों, हमें बदलते हुए देखना चाहते हैं हर एक, है ना। ब्राह्मण परिवार हो या बाहर दुनिया में भी कोई हो, तो इसीलिए बाबा ने कहा यदि कोई आपका अपकार भी करता है तो उसे क्या करो, उपकार में बदल दो, है ना। कोई स्वभाव संस्कार के रूप में भी आता है ना, कोई क्रोध से हमसे व्यवहार करता है, कोई गुस्से से हमसे व्यवहार करता है, कोई हमारी इंसल्ट करता है, तो भी बाबा ने क्या कहा, आप रहम के भावना से, है ना, रहम की भावना से क्या करो, उनको उनके स्वभाव संस्कार को बदल दो, है ना। या बाबा ने कहा कि आत्मिक दृष्टि से उनकी अगर दैहिक दृष्टि है तो उसको भी बदल दो, परिवर्तन कर दो। तो बाबा ने कहा है, जब ये परिवर्तन करने की विधि हमको आ जाएगी ना, कि कोई भी बात आती है उसे हम कैसे परिवर्तन करें, तो जब परिवर्तन करने की विधि आ जाती है तो बाबा ने कहा आप विघ्न जीत बन जाते हैं। और जितना जितना विघ्न जीत बनेंगे तो क्या होगा, सर्व की दुआएं या शुक्रिया मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें परिवर्तन शक्ति को बाबा ने एक मुरली चलाई हुई पूरा, सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर शाम तक कोई भी बात को हम कैसे परिवर्तित करें, है ना, कोई भी बात आती। और बाबा ने कहा कि अनुभवों के स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से क्या दिखाई देगी, खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी, है ना। जैसे मान लो आप कोई चीज स्वीट खा रहे हैं, अपना कोई मीठा खाया तो आपके चेहरे से कैसा दिखाई देगा, फील होगा ना। और मान लो कोई तीखा चीज आपने खा लिया, तीखे चीज का भी प्रभाव होगा ना, कैसा हो जाता है उसका, है ना। तो ये भी होता है कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हम तो अनुभव कर रहे हैं और चेहरे से कुछ और दिखाई दे, नहीं, जो आप अनुभव कर रहे हैं वो चेहरे से उसकी झलक दिखाई देगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि अपने चेहरे और चलन से भी हमें क्या करना है, बाबा का साक्षात्कार कराना है, है ना। तो चेहरे से जब हमारी खुशनसीबी दिखाई देगी तो स्वतः बाबा का साक्षात्कार होगा, है ना। और बाबा ने क्या कहा कि अभी आप अखबार में भी निकलवा दो, क्या निकलवा दो, कि हमारा स्वर्ग आने वाला है, वो कैसा होगा, ये होगा, तो क्या होगा फिर, लोग क्या करेंगे, किसके पास आएंगे। तो जब ऐसा क्यों कहा बाबा ने, कि जब हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे एडवर्टाइज देंगे तो लोग आएंगे, फिर हम उनको ज्ञान सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। खैर अभी तो बहुत सहज हो गया है ज्ञान सुनाना, क्योंकि ये बीमारी आने से, है ना, बहुत लोगों का जो है आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ा है। तो इसीलिए आज की मुरली में खास हमको यही ध्यान देना है, दो तीन बातें हैं, कि एक तो हमें आत्मा समझने की, आत्मा की प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़ानी है। आत्मा हम जितना प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो तूफानों से बचेंगे। तो ये भी देखना, आत्मा किसके संपर्क में आ रही, किन बातों के संपर्क में आ रही, ये तूफान अचानक तो नहीं आ जाते ना, हम कोई छोटी छोटी बातें आती है लेकिन हम अवॉइड करते हैं, फिर वो तूफान का रूप ले लेते हैं। तो जैसे एक बार गुलजार दादी ने बताया था बहुत अच्छा, यहीं एक बार क्लास में दादी ने बताया था कि जैसे मान लो पानी है, पानी का स्वभाव कैसा है, शांत शीतल, लेकिन अगर उसी पानी को आग के ऊपर रख दो थोड़ी देर आग के ऊपर रख दो, क्या होगा, वो आग के संपर्क में रहने के कारण पानी गर्म हो जाएगा। फिर अगर उस पानी को किसी के ऊपर फेंक देंगे तो जला देगा ना। तो ऐसे ही दादी ने कहा कि ऐसे ही आत्मा भी क्या है, शांत और शीतल है, लेकिन जब विकारों की आग है ना, विकारों के साथ लंबे समय तक रहती है ना, तो क्या हो जाता, विकारों की आग के कारण आत्मा की तपत, आत्मा की बढ़ जाता है, और वो फिर आत्मा किसी से भी व्यवहार में आएगी ना तो क्या करेगी, वो जलाने का ही काम करेगी, है ना, क्रोध से बोलना, क्रोध से चलना, हर व्यवहार ही उसका। तो जैसे है ना, विकारों की अग्नि के साथ रहने से आत्मा एकदम उसमें तपत आ जाती है, जलाने लगती है, ऐसे ही ठीक बाबा के साथ जब रहती है तो स्वतः क्या आने लगता है, तो बाबा के अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, वो स्वतः आने लगता है अपने। तो याद भी, जो बाबा की याद में भी रहने के लिए हम कहते हैं ना, बाबा की याद में कैसे रहें? आत्मा समझने से शांति, आत्मा हम अकेले हैं, केवल आत्मा शांति की करंट जैसे। लेकिन जब आत्मा बाबा के साथ है तो ताकत आएगी, शक्ति आएगी। इसीलिए जब हम, बाबा ने कहा था एक जगह कि तुम्हारा योग क्यों टूटता है, क्योंकि आप अकेले बाबा को याद करते हो। तो परमधाम में जब भी बाबा को याद करते हैं तो डबल बिंदु, दो बिंदु देखें, दो बिंदु जब देखें फील करें कि दोनों बिंदु चिपक गए हैं। तो एक, दोनों बिंदु में एक बिंदु बाबा और दूसरा बिंदु कौन? मैं, है ना। तो कभी भी देखें तो बहुत इजी होगा कि दो बिंदु हैं परमधाम में चिपके हुए। इसीलिए बाबा कई बार साकारवाणी में कहते हैं कि आपस में क्या करो, चिपक जाओ। तो ऐसे परमधाम में आप देखो बाबा के साथ चिपक जाओ। और वास्तव में बाबा कहते हैं योग मीन्स, बाबा कहते हैं कोई संकल्प ही नहीं होनी चाहिए, सेम ही याद हो जाती है। जो हम थोड़ा कमेंट्री सुन के, थोड़ा गीत सुन के ऐसे, ये सेम ही याद है, एक्चुअल याद नहीं। असली याद है बाबा क्या कहते हैं, जहां आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, आवाज से परे, उसमें हमारे भी संकल्प ना हो। बाबा के संकल्प क्या है बस। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि जब आप बाबा के पास मगन हो जाते हैं ना, तो आपको क्या सोचना है, नहीं आपको क्या सोचना, आपको क्या करना, वो भी कौन सोचता है? बाबा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि तुम मेरी याद में मगन हो जाओ तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो असली याद ये है। अगर आप 10 मिनट भी करते हैं इसको ना, 20 मिनट भी करते हैं, तो इसको फील करेंगे, आपको फील होगा कि हाँ ताकत आ गई है ना। तो जब ऐसे याद में मगन होंगे तो शक्ति आएगी, तब ताकतवर बनेंगे। तो कोई भी, जो बाबा ने कहा याद से शक्तिशाली बन जाते, कोई भी आत्मा कमजोर या शक्तिशाली कैसे बनती है? विचारों के आधार पर ही। आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, व्यक्ति वही होता है ना। जैसे शिवाजी को दिखाते हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, एवरेज कद काठी था, लेकिन अंदर विचार एकदम क्रांतिकारी। तो विचार इतना शक्तिशाली, महान बन गए। अब कोई कितना भी लंबा चौड़ा हो बहुत, लेकिन विचार, वो पहले यही सोचता रहे जब युद्ध होगा तो हम किधर से भागेंगे, अपने ही भागने के फेरे में रहे। तो ये विचारों से जो है, विचार के आधार पर कोई भी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी कमजोर है, ये फील होता है। तो इसीलिए अगर हमको ताकतवर बनना है, जो बाबा ने कहा है, आप बाबा की याद में जितना मस्त रहेंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर आपकी 2 घंटे या 2.5 घंटे से कम आपकी बीज रूप अवस्था है तो आपके संस्कार परमानेंट चेंज नहीं होंगे। बाबा ने पहले ही कह दिया है, अगर आपको संस्कार चेंज करने हैं परमानेंट, तो कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे बीज रूप अवस्था होनी चाहिए। और बीज रूप अवस्था कैसे? आप सीधा परमधाम में देखो, 2 बिंदु चिपक गए हैं, आप जस्ट खो जाओ उसमें, है ना। तो 0.5 घंटा, 40 मिनट अगर एक बार में कर पाते हैं तो ऐसा करें, ऐसे 3-4 बार में, 5 बार में, या सुबह अमृत वेले इस टाइम में 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें आत्मा समझ करके फिर बाबा को याद करना है, और वो भी परमधाम की स्थिति में। तो इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है कि कम से कम 2-2.5 घंटा बीज रूप अवस्था, इसका भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसे कहते हैं आजकल कि अगर आधे घंटा कोई आत्मा एकाग्र रहे तो जो भी करना चाहे वो कर सकती है। तो याद किस पावरफुल स्टेज, जैसे आप बाबा से जुड़ गए, आत्मा चिपक गई और आधे घंटे तक आपके कोई थॉट्स नहीं है, केवल बाबा से जुड़ गए, जस्ट केवल बाबा को देख रहे हैं आप, बाबा से चिपक गए हैं और बाबा को देख रहे हैं। आप देखेंगे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सभी संकल्प पूरे हो जाएंगे, जो भी संकल्प करना चाहते हैं आधे घंटे में केवल। लेकिन हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आधे घंटे का मतलब हमारा कोई और कोई सिद्धि नहीं, लेकिन हमें क्या लक्ष्य रखना है, विकारों को, अपने विकर्मों को खत्म करने का, है ना। हमारे पिछले जन्मों के कितने विकर्म हैं हमें तो पता नहीं है ना, और सबसे ज्यादा विकर्म हमारे कहाँ बने हैं, सबसे ज्यादा विकर्म संगम युग पर। क्योंकि अगर हम कुछ भी बात बाबा की नहीं मानते हैं ना, तो अभी तक तो हमने मनुष्य आत्माओं की बात नहीं माना, लेकिन अभी इस समय हम डायरेक्ट किसकी नहीं मान रहे हैं, भगवान की। तो अगर भगवान की कोई बात नहीं मान रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस पर अटेंशन देना है कि अब देखना है कि हमने संगम युग पर हमसे क्या क्या पाप हुआ है। आज जो बाबा ने मुरली में कहा उसको हम धारण कर रहे हैं, बाबा ने कहा ना देह अभिमानी बनो, देव माने समझो, तो तूफान भी नहीं आएंगे, प्लस अब बाबा को याद भी कर सकेंगे, विकर्मों को भी चुक्त कर सकेंगे। तो इसलिए अगर हम इस जन्म के भी, चलो पिछले जन्म का हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस जन्म को तो हम देख सकते हैं ना कि इस जन्म में हमसे कितने विकर्म हुए, और सबसे बड़ा विकर्म भगवान की अवज्ञा करना। तो इसलिए अभी तक तो जो भी हुआ हो गया, अब इस भट्टी में हम आए हैं तो यहां से हम इसका ध्यान दें कि अब तक हुआ तो हुआ, अब से हम, है ना, हमारी लाइफ में ये चेंज आ जाए कि जो बाबा कहते हैं हमें वही करना है, और वही करने के लिए पहले हमको आत्मा के रूप में खुद को देखना है। तो जितना जितना हम आप खुद को आत्मा के रूप में देखेंगे तभी हम बाबा के श्रीमत पर भी चल सकेंगे, बाबा को याद भी कर सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमको बढ़ा देना है बहुत। और किसी को कुछ पूछना है आज के मुठ? ये जो आपने कहा इसमें इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो है जिसकी बुद्धि बल है, जिसको बहुत एकाग्रता की पावर है, तो वो तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा को याद करे। लेकिन अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो बीज रूप अवस्था में इतना स्थित नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे सहज तरीका है जो बाबा ने बताया था दादी प्रकाशमणि को, कि दादी से पूछा था, दादी प्रकाशमणि से बाबा ने, कि सबसे सहज और सबसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने बताया, बाबा ने ही, कि सबसे सहज और सबसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। तो कोई भी आत्मा है एकदम लास्ट में आई है, कितना भी वीक है, तो उसको पहले क्या करना है, एक दिन उसको सुबह से लक्ष्य रखना है कि आज पूरे दिन जो भी हमको दिखाई देगा उसको क्या करूंगी, मैं आत्मा उसे दुआएं दूंगी। तो जब मैं आत्मा दुआएं दूंगी हर आत्मा को, तो एक दिन पूरा दुआएं देते जाना है, जो भी दिखाई दे, हर एक को जो भी सामने आ रहा है ना उसको दुआएं दो। फिर बाबा ने कहा एक दिन आप सफल हो जाते हैं दुआएं देने में तो एक हफ्ता दो, एक हफ्ता अगर आपने दे दिया फिर एक महीने तक दुआएं दो। एक महीने तक दुआएं जब लगातार देते हैं तो इसके बाद क्या हो जाता मालूम है, एक महीने आपने कर दिया ना तो आप आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः आपकी दुआएं निकलेगी, स्वतः हर एक के लिए निकलेगी। और इसी को कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, बाप समान अवस्था, आपकी स्थिति बाप समान हो जाती है, क्योंकि हर एक के लिए क्या है, दुआएं निकलती है ना हर एक के लिए। तो ये एक सहज विधि है, इसके आधार पर भी हम ये कर सकते हैं। या दूसरा है जो ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो इसमें भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप हर जो काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे बाबा को बताओ, बाबा मैं अभी ये लिखने जा रहा हूँ, ये पढ़ने जा रहा हूँ, या जो भी काम करना, जैसे आपने खाना भी खाया, मान लीजिए आपने सब्जी खाया, उसमें आपको नमक ज्यादा लगता है, मिर्ची ज्यादा लगती है, कुछ भी, वो भी बाबा को बताते जाओ हर एक। अब सोने जा रहे हैं तो भी बाबा को बताओ। तो हमेशा ये बाबा से जो है ना, जितनी बातें, छोटी छोटी बातें बातें करते जाओ, बातों का आधार ही बाबा हो, हर एक बात बाबा से। तो ये भी सहज विधि है। तो ये भी कुछ दिन करने के बाद ही आपको लगेगा जैसे मेरा निरंतर योग लगा हुआ, जब ऐसे हो जाएगा ना तो कुछ दिन करने के बाद आपकी बुद्धि इतनी सुदृढ़ हो जाएगी ना कि आपको बीज रूप अवस्था योग करना भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिस तो करना है, अमृत वेले के योग में, शाम के योग में, लेकिन जिनका नहीं होता है उनके लिए एकदम सहज विधि है और बाबा ने बताया है। तो दुआएं दो, दुआएं लो। और किसी को कुछ पूछना है? आपको ठीक लगा? ठीक, चलिए। और किसी को? जी, एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ानी है? एकाग्रता की शक्ति किसको बढ़ानी है? एकाग्रता की शक्ति किसको बढ़ाना है? किसको कहेंगे एकाग्र? किसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति, किसको कहते हैं? जी, एकाग्रता की शक्ति किसको कहेंगे? फिर आपने कहा ना एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। जी, वो तो हो गया एक, लेकिन कई जगह होते हैं एकाग्रता की शक्ति हर जगह यूज करना है ना। तो जैसे किसी ने गुलजार दादी को कहा कि दादी मैं बस में बैठ के जा रही थी तो इतना खो गई याद में कि मुझे जिस स्टेशन पर उतरना था ना वहां नहीं उतरी, आगे चली गई, इसको क्या कहेंगे? तो जिस समय है ना, जैसा समय वैसा योग भी हमारा होना चाहिए। जैसे आप एकदम बैठने को मिला, कोई काम नहीं, आप चुपचाप बैठे, उस समय बीज रूप अवस्था का। आप कारोबार में हैं, है ना, आप दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, आप सोच कुछ और रहे हैं, नहीं, एकाग्रता मीन्स जो कार्य आप कर रहे हैं मन और बुद्धि वहीं, ऐसा नहीं हम बना तो सब्जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको ये भी काम करना, वो भी करना, बनाते समय तो गड़बड़ हो जाएगा, आप नमक डाल देंगे और याद ही नहीं आएगा नमक डाला नहीं डाला, दोबारा तो नहीं डाल देंगे ऐसे करके, वो भी भूल जाता है कई बार। इसलिए एकाग्रता की शक्ति मीन्स जो कार्य कर रहे हैं वहां मन और बुद्धि दोनों रहे, है ना। बाकी एकाग्रता की शक्ति तो सबसे तेज बढ़ती है बीज रूप अवस्था में ही। लेकिन ये इतना सहज नहीं है एकाग्रता की शक्ति, इसीलिए अपने दुआएं देना जो है ना, ये बहुत सहज, और इससे बहुत जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो इसलिए हर एक को दुआएं देना है, ठीक है, और हर एक से दुआएं लेना है। किसी ने कहा बाबा को कि बाबा हमें तो आप सही काम है, भले दुनिया रूठे तो रूठे, है ना। बाबा ने क्या कहा मालूम है? बाबा ने कहा बाबा को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तो बाबा क्या चाहते हैं कि आप जितना रिस्पेक्ट, जितना इज्जत आप भगवान को देते हैं, इतना ही रिस्पेक्ट, इतना ही रिगार्ड अगर हर एक आत्मा को देंगे ना, तो आत्माओं की दुआ, और आत्माओं को अगर आप सम्मान देते ना, तो उसके बदले भी आपको दुआ कौन देता है? भगवान देता है। अब देखेंगे ना, बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं, आप मेरे सिर के ताज हो, आप मेरे नैनों के नूर हो, भगवान महिमा करता है। तो भगवान जैसा अगर हर एक को हम भी इज्जत देने लगे, सम्मान देने लगे, तो हमारी स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी तो 11:15 जाना होगा ना आप लोगों को, तो इसीलिए आज के मुरली में तो मुख्य रूप से यही तीन बातें थी। एक तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहो तो थकावट नहीं होगी, तो क्योंकि थकावट क्यों होती है, जब माया के तूफान आते हैं, और माया के तूफान कब आते हैं, जब हम देह अभिमानी अवस्था में होते हैं। देह अभिमान है तो माया के तूफान आते हैं, है ना। बाबा ने ये भी कहा आप जितना याद में मस्त रहेंगे उतना अवस्था शक्तिशाली बनेगी। वरदान में भी था परिवर्तन शक्ति के बारे में, बाबा ने परिवर्तन शक्ति को भी हमें यूज करना है, और चेहरे से है ना? तो बाबा ने कहा ना कि जो अनुभव है किससे दिखाई दे, चेहरे से, है ना। तो जो भी अनुभव में खो जाते हैं, ठीक है। ओम शांति।